आदरणीय देवियों एवं सज्जनों, साना साक्षी कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 33वां संस्करण पुनः प्रसारित कर रहा हूँ। कहानी में तृष्णायुक्त कंजूस के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। आगे, एक नगर में एक कंजूस सेठ नाम हीरालाल रहते थे। नियमित तो मंदिर अवश्य जाते थे। एक दिन उन्होंने मौका देखकर मंदिर के महंत जी से विचार विमर्श किया कि मेरी इच्छा भगवान की सेवा करने की बहुत होती है, लेकिन पैसे किसी भी कारण से खर्च हो, चाहे उद्देश्य परोपकार में ही क्यों न हो, पैसा खर्च करना मुझे बहुत अखड़ता है। मैं नियमित हाथ में 1 रुपया मंदिर में चढ़ाने हेतु घर से लाता हूँ, लेकिन पैसा है कि हाथ से छूटता ही नहीं। बहुत कोशिश करता हूँ कि भगवान की सेवा में रुपया भेंट करूँ, लेकिन क्या करूँ कुछ समझ नहीं आता है। एक दिन की घटना है कि मैं घर से संकल्प लेकर चला कि आज तो 1 रुपया अवश्य ही मंदिर में रखी दान पेटिका में डालकर आऊँगा। इसके लिए घर से ही मुट्ठी में 1 रुपये का सिक्का रख लिया था। मंदिर में काफ़ी भीड़ थी। आरती के उपरांत जब मैं दान पेटिका के पास जाकर मुट्ठी खोली तो सत्य ही रुपया पसीने के कारण भीग गया था, लेकिन मुझे मानो यह आभास हुआ कि रुपया रो रहा है, दान पेटिका में जाने से मना कर रहा है। मेरा दिल उसके आंसू देखकर पिघल गया और मैंने उसको वापस कुर्ते की जेब में रख लिया। यद्यपि घर पहुंचकर जब मैंने सेठानी को सारा वृतांत बतलाया तो उसने मेरी कंजूसी पर बहुत क्लेश किया। कृपया घर में शांति बनी रहे, ऐसी कोई उपाय बतला में। सेठ जी से सारा वृतांत सुनकर महंत जी ने कहा, आपकी समस्या का तो बहुत सरल सा उपाय है, शास्त्रों में दिया हुआ है। आप भगवान की मानसिक पूजा भी कर सकते हैं, मंदिर आने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, और भगवान से मन भी जुड़ा रहेगा। अतः मेरी बात बहुत ध्यान से सुने। आप घर पर ही नियम बना लें कि नित्य प्रातः सूर्य निकलने से पहले बिस्तर त्याग कर नित्य क्रिया से निवृत्त हो किसी खुले स्थान में एक ऊनी स्वच्छ आसन पर बैठकर नेत्र बंद कर लें, तथा यह महसूस करें कि मेरे सामने मेरे इष्ट देव भगवान, मान लो कृष्ण, विराजमान है। सोने के रत्न जटित सुंदर सिंहासन पर बहुत ही सुंदर मुकुट व पोशाक पहने पीताम्बर रत्न जटित ओढ़े मुस्कुराते हुए विराजमान हैं। आप उनको गहराई से एकटक देखते हुए चरणों को सोने के बड़े थाल में दूध व गंगा जल से धो रहे हैं। बारिश के साफ एवं सुंदर तौलिए से चरणों को पहुंचकर पुष्प अर्पित कर रहे हैं तथा चंदन का लेप उनके मस्तक पर लगाया है। इत्र भगवान को भेंट कर मानसिक आरती एक मनपसंद भजन गाते हुए करनी है। तदुपरांत सोने के सुंदर डिजाइन बने कटोरे में केसर मेवा युक्त दूध भरकर रखा है तथा डिब्बे में से चीनी डालकर चम्मच से मिलाकर भगवान को समर्पित कर रहे हैं। साथ में ताज़ा फलों का ढेर भी अर्पित किए हैं। तदुपरांत भगवान को कीर्तन सुनाते हुए जब स्वयं को डकार आवे तब समझें कि प्रभु ने प्रभु कलेवा से निवृत्त हुए हैं। अतः पूजा समाप्त कर बहुत आनंद आवेगा और धन भी कुछ व्यय नहीं होगा। यही विधि दोपहर व रात्रि को भोजन के समय अपनावें। महन जी की बात सेठ जी के मन में बैठ गई तथा दूसरे दिन से महन जी ने निर्देश अनुसार सेठ जी ने मांस भोजन प्रारंभ कर दिया। पूजा का उपयुक्त तरीका सेठ जी को बहुत भाया, जिसको वह नित्य नियमित रूप से क्रियान्वित कर आनंदित हो रहे थे। एक दिन मांस पूजा करते वक्त सेठ जी के हाथ से दूध में भूलवश 3 बार चीनी पड़ गई। ध्यान आते ही स्वभाव अनुसार सेठ जी चीनी को चम्मच से निकालने को उद्यत हुए कि भगवान ने उनका हाथ पकड़ लिया कि मांस पूजा में भी इतनी कपटता। होश आने पर सेठ जी को अपनी कपटता पर बहुत ग्लानि हुई। पुनः इसी तरह एक दिन सेठ जी पड़ोस में किसी के यहाँ पत्नी के बहुत आग्रह पर सत्यनारायण की कथा में सम्मिलित होने पहुँचे। कथा समाप्ति होने पर आरती में डालने को जेब से 1 रुपया निकालते वक्त 500 का नोट उनकी जेब से नीचे गिर गया, जिसे पीछे खड़ी वृद्ध संभ्रांत महिला ने उन्हें उसी समय पीछे से इशारा कर वापस कर दिया, जिसको सेठ जी ने यह समझकर आरती के थाल में डाल दिया कि उक्त महिला ने 500 का नोट आरती की थाली में भीड़ अधिक होने के कारण डालने को उनसे आग्रह किया है। पीछे मुड़कर सेठ जी ने उस महिला को बड़े आदर से देखा व खुद पर 1 रुपया चढ़ाने के लिए ग्लानि महसूस करने लगे। जब कार्यक्रम समाप्त हुआ तथा सब लोग जब घर जाने लगे तो उस महिला ने सेठ जी को बतलाया कि जो नोट मैंने आपको दिया था वह 1 रुपया निकालते वक्त आपकी जेब से गिर गया था, तो आपको लौटाया था मैंने। तो महिला की बात सुन सेठ जी वहीं मूर्छित हो गए। बाद में ठंडा पानी पीकर घर को रवाना हुए। घर आकर 2 हफ्ते बीमार रहने के बाद मुश्किल से पानी पी भी कर स्वस्थ हुए। दिनचर्या के अनुसार सेठ जी सुबह शाम अपने खेतों की तरफ मुनीम जी को साथ लेकर घूमने का नियम बना रखा था। मुनीम जी उन्हें शाम के वक्त चलते चलते दिन भर की व्यापारिक रिपोर्ट करते। इधर घूमते घूमते सेठ जी ने देखा कि उनके खेत में कार्य करते वक्त किसान अपने परिवार के साथ बड़ा प्रसन्न दिखाई पड़ता था, जो खेतों में झोपड़ी बनाकर परिवार सहित रहता था। दिन भर पूरा परिवार सेठ जी के खेतों में मेहनत से कार्य करता, जो पगार मिलती उसी में बहुत सुखपूर्वक किसान परिवार रहता था। सेठ जी ने उसको नित्य ही प्रसन्न मुद्रा में देखते थे। एक दिन मुनीम जी से सेठ जी ने कहा कि मुनीम जी, मैं दिन भर इतना धन अर्जित करता हूँ फिर भी चिंताग्रस्त रहता हूँ, और ये किसान इतना प्रसन्न। तो मुनीम जी ने सेठ जी को सलाह दी कि चांदी के रुपयों से भरी थैली इसमें 99 रुपये मात्र रखकर इसकी झोपड़ी में डाल दें और 1 माह बाद इसका असर देखें, आपको उसी प्रसन्नता का राय पता चल जाएगा। मुनीम जी की सलाह मानकर सेठ जी ने यह कार्य मुनीम जी को ही सौंप दिया और एक दिन रात्रि को चुपचाप मुनीम जी ने चांदी के 99 रुपयों से भरी थैली किसान की छप्पर में से झोपड़ी में मौका देखकर डाल दी, जिसको प्रातः जब किसान ने देखा तो आश्चर्यचकित हो गया। तथा एकांत में जाकर उन्हें गिनना तो 99 रुपये निकले, जिनको गिनकर किसान चिंतित हो गया कि काश 100 रुपये पूरे होते तो अच्छा रहता। बहुत सोचकर वह थैली उसने खेत में ही गहरा गड्ढा खोदकर छुपा दी। तथा घर आकर नित्य की तरह कार्य करने लगा, पत्नी से भी सारी घटना छुपा ली। चांदी का 1 रुपया कमाने की चाह में किसान ने एक्स्ट्रा कार्य करना प्रारंभ कर दिया। अब वह खाली समय में दूसरों के खेतों में भी कार्य करके पैसे कमाने प्रारंभ कर दिए। तथा रोज चांदी का रुपया खरीदने के लिए बचत कर पैसों को गिनता रहता। एक दिन मुनीम जी के साथ जब सेठ जी खेतों की तरफ घूमने निकले तो किसान की खुशी गायब देखकर मुनीम जी से पूछा, इसे क्या हुआ? तुमने तो चांदी की थैली इसकी झोपड़ी में रखी थी ना? मुनीम जी ने सेठ जी को बताया कि यह भी 99 के चक्कर में भ्रमित हो गया है, बुरा मत मानना, ऐसे ही हालत से आप भी गुजर रहे हैं, इसी कारण आपकी मन की शांति समाप्त हुई है। सेठ जी सभी के मन में अधिक धन अर्जित करने की तृष्णा असीमित बनी रहती है। स्वयं ही मन को नियंत्रित न करें तो शांति कभी भी नहीं पा सकते। बंधु, मेरी कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट देकर बताएं, साथ ही लाइक व सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।